जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे राधा राधा रटती सब व्याधा मिट जान कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जान श्री राधे राधे गोविंद गो राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोपाल राधे
गोविंद राधे राधे गोपाल राधे
राधे गोविंद गोविंद
राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
वृंदावन सोवन नहीं नंदगाम सोगा बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सोना
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे
गोविंद राधे राधे गोपाल राधे
गोविंद राधे राधे गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
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 हरिओम पूज्य महाराज के पुनीत श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सबकी ओर से यह प्रेमपुरी आश्रम एक पवित्र संस्था है पुनीत संस्था है जिसमें प्रतिवर्ष पूज्य महाराज जी का विशेष आगमन इनकी जो पवित्रता है उनको अनेक संतों की तरह और पुनीत करने में पूज्य महाराज जी का जो आगमन होता है उनके आशीर्वचन मिलते हैं वह हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है और पूज्य महाराज जी को नवयोगेश्वर संवाद के में हम कई सालों से सुन रहे हैं इस वर्ष भी हम महाराज जी द्वारा यही पुनीत ग्रंथ का ही श्लोक के माध्यम से प्रवचन के माध्यम से पूज्य महाराज जी से सुनेंगे आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को फिर से दंडवत प्रणाम करते हुए हरिओम
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मा ने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी
सद्गुरु प्यारे
हम हो
हरि के
चुके रमण बिहारी
ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के
ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के
साधु सेवा करम हम न दुनियादारी
साधु सेवा करम दुनियादारी
कोई भलात हो चाहे बुरात हो चुके रमण बिहारी के
कोई भलात हो चाहे बुरात हो चुके रमण बिहारी
रमण बिहारी
नाम की जय
सद्गुरुदेव
भगवान की जय
सर्व संत हरि भक्तन की
जय
आदि के
आनंद की जय
जय जय
श्री राधेश्वर
नारायण 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 तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्युपसमाशय भगवान मधुसूदन ने अभी प्रेरणा दी थी गुरु विषयक और वही प्रसंग प्रारंभ हो रहा है हमारे मन में यह बिल्कुल भ्रांति नहीं है कि हम आपको कुछ सिखाने आए हैं ये हमारे दिमाग में बिल्कुल भ्रांति नहीं है आप लोग इतने श्रुत सत्संगी हैं कि आपको कोई नई चीज हम बताने जा रहे हैं वो शक्य नहीं आप लोगों का सौभाग्य है कि आपको इस प्रेमपुरी जैसी संस्था के आश्रय से बड़े बड़े महापुरुषों का सत्संग प्राप्त होता है तो हम आपको कोई चीज नई बताएंगे ऐसा तो नहीं आप सब जानते हो वही बात घुमा फिरा के आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी क्योंकि अभी हम लोगों ने श्रवण किया है कि परस्पर भगवत चरित्रों का कहना सुनना ये भगवत आश्रितों के लिए साधन है हमारे सनकादि चार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार वो ब्रह्मिष्ठ हैं भगवत रूप हैं माया भी उन्हें संस्पर्श नहीं कर सकती है वो 5 वर्ष के बालक की तरह दिगंबर घूमते हैं लेकिन गुरुओं के भी वो गुरु हैं हमारे नारद जी के भी वो गुरु हैं और हम लोगों की संतों की परंपरा में जब गुरु प्रणाली का स्मरण करते हैं तो उनमें भी सनकादिकों का नाम प्रमुख रूप से आदरपूर्वक लिया जाता है उन चारों को कुछ पता नहीं है ऐसी बात नहीं सब ब्रह्मणी है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति वो ब्रह्म है सब जानते हैं लेकिन तो भी उनमें से एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते हैं कोई डर नहीं है कि आज तुम बनोगे आज हम बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो बैठ गया तो उनमें एक का प्रवक्ता बनना और तीन का श्रोता बनना, ये किसी प्रकार से ये निर्णय नहीं करता है कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा है, वो परस्पर परिपूर्ण है। केवल श्रवण करना है इस दृष्टि से श्रवण करते हैं, केवल कथन करना है इसलिए कथन करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे मन में यह अभिमान नहीं है कि हम आपको सुना रहे हैं और हम व्यास आसन पर बैठे और आप कोई बहुत बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो शायद हमसे भी अच्छे ढंग से प्रवचन कर ले, प्रवचन न कर सके तो विषय का उत्थापन कर ले। आपको मालूम है, आपका अनुभव है, आपने सुना है, और बहुत लोग इसमें से मनन करने वाले भी हैं। लेकिन ऐसे ही प्रबुद्ध श्रोताओं के बीच में कुछ कहने सुनने का आनंद होता है, उस आनंद की अनुभूति के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं, आनंद लेने के लिए आए हैं। आप लोग हमको आनंद देते हैं, इसीलिए हम भागे भागे चले जाते हैं। तो ये सत्संग हमारा नशा है, सत्संग नशा हो जाना चाहिए। जैसे चिलम पीने वाले रोटी न मिले लेकिन चिलम चाहिए, अफीम खाने वाले को अगर अफीम न मिले तो उसको लगता है कि अब हम गए मरे। हमको एक अफीम वाले ने 70s में बताया था, वो हमारे एक संत के पास रह रहे थे अफीम छोड़ने की दृष्टि से, तो अपनी अनुभूति बताते थे कि महाराज मुझे अलग बैठा दिया जाता था, हमारे पिताजी हमारी चौकीदारी में रहते रहे, हमने दोनों को देखा है, पिताजी बेचारे चौकीदारी में बैठे रहते थे, वो अपना पेड़ के नीचे बैठा है। तो कहता महाराज पेड़ के नीचे बैठा था, मैं सोचता हे भगवान तू कृपा कर एक थोड़ी सी अफीम पेड़ से खिला दे, कितना आनंद हो जाए, तू बहुत दयालु है मेरे को थोड़ी सी अफीम दे दे। ये सच्ची बात बता रहा हूं, आज मैं रोटी छोड़ दूंगा भगवान तो थोड़ी सी अफीम गिरा दे। ये अफीम का नशा है, उसी प्रकार से भजन का नशा होता है। चैतन्य महाप्रभु जी से किसी ने एक भक्त के लिए कहा कि भक्त महाराज ये तो जब हमारे संतों की भाषा में डोल डाल कहते हैं, आप लोग समझ जाएंगे उसका मतलब हम और क्या कहें, ये जब डोल डाल में जाता हूं वहां भी भगवान का कीर्तन करता है, नाम कीर्तन करता है। तो चैतन्य महाप्रभु को तो मालूम था लेकिन लोक शिक्षण के लिए कह दिया, अरे भाई तो वहां कीर्तन करता है। वैसे आप लोगों को भ्रांति न हो जाए इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि डोलडाल करते समय भी, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो हमारा नाम ले देना, डोलडाल करते समय भी भगवान का नाम लिया जा सकता है, कोई हानि नहीं है। माला लेके मत जाओ वहां, माला ही लेके शुरू हो जाओ तो फिर माला को फिर कहां रखोगे सफाई वाईफाई के लिए, तो माला तो नहीं ले जाओ, लेकिन जप करने में निषेध नहीं है, स्मरण करने निषेध नहीं है, वहां भी आप कर सकते हो। कर सकते हो नहीं, हम च्वाइस क्यों दें आपको, करना चाहिए, नो च्वाइस। अगर हमारी मांगते हो तो करना चाहिए, कोई डर नहीं है। तुम कहोगे भगवान को वहां बुलाएं, अरे तुम्हारे बुलाने से भगवान आएंगे, वो तो वहां पहले ही मौजूद है। भगवान तो सब जगह है। तो बुलाना नहीं, वो तो वहां है। अगर वो न होते तो वो डोल डाला आलय न होता, वो है इसलिए डोल डाला है। अरे बड़े महंगे महंगे डोल डाले होने लग गए भाई, हम तो उनके दाम सुन के हमको कभी कभी स्वेटिंग हो जाती है, हमको विश्वास ही नहीं इतना महंगा एक डोल डाले। डोल डालय शुद्ध उच्चार नहीं है, डोल डालय, इतनी महंगी महंगी सीट है, उसमें बटन दबाओ तो क्लीनिंग, बटन दबाओ तो ड्राइंग, और बटन दबाओ तो मैंने हवा से सब सुखाव खो करके एकदम पिच कर देते हैं, म्यूजिक भी बजता है। वाह भैया अच्छा है, अरे भगवान ने दिया साधन तो उसका उपयोग करो, क्या बुराई है। मेरे बोले कहा अच्छा, तो डोल डाल के समय भी भजन कर सकते हो, और ये इसलिए और ज्यादा जरूरी है। माई डियर, जिनको हार्ट अटैक होता है ना, उसका पूर्व लक्षण ये है कई लोगों का कि उनको शौच की हाजत होती है। हमारे एकाध राष्ट्रपति शौचालय में इसीलिए मिले उस अवस्था में, क्योंकि उस समय लगता है कि हमको शौच लगी है, वो शौच करने जाते हैं, एक्चुअली वो इन्फॉक्शन होता है, इन्फॉक्शन मैंने हार्ट का ऊपरी, और वहीं जाके जय श्री कृष्ण हो जाते हैं। तो अब अगर हम शौच के लिए गए हुए हैं और अंतिम समय है, और अगर भजन नहीं किया माइजर, अंतमति सोगति क्या होगा माइजर बताओ, अंतमति सोगति। तो डोल डाल की आप करें कि हम डोल डाल कर रहे हैं, इस आकृति का डोल डाल हो रहा है, उसको ऐसे क्लीन करना है, नहीं, वो तो ऑटोमेटिक होगा। वहां पर भी भजन करो, क्या पता का जाने या श्वास को आगमन होए न होए, हार्ट अटैक हो गया वहीं पर तो माई डियर फिर क्या करोगे। इसलिए भजन करो, शौचालय में भी भजन करो, और हम अपना अभिमान क्यों करें कि हम कह रहे हैं कि तुम इसलिए भजन करो, यह हमारा अभिमान नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, कार्याकार्य व्यवस्थितो में माने क्या नहीं करना है और क्या करना है, इसका निर्णय हमारे लिए महापुरुषों ने शास्त्रों के माध्यम से पहले ही कर रखा है। आप लोग सत्संगी हैं, आप लोगों को भले पूरा ज्ञान न हो लेकिन संस्कार तो हैं। मीमांसा शास्त्र के अनुसार धर्म का स्वरूप है विधि निषेधात्मक। विधि निषेधात्मक माने शास्त्र या वेद जिसकी विधि करे कि ये करो, जिसका आदेश करे उसको करो, उसका नाम विधि, माने तुम्हारे लिए ये विधान है, ये तुमको करना है। कुछ चीजें शास्त्र मना करते हैं, वेद मना करते हैं, इनको नहीं करो, उसको निषेध कहते हैं। तो विधि निषेध यही कर्म है। अगर आप लोगों को रामचरितमानस का स्मरण हो तो विधि निषेध मैं कलिमल हरणी राम कथा रवि नंदिनी वर्णी, प्रयाग का वर्णन करते समय श्री यमुना महारानी को कर्म कथा का रूप कहा है। ये कली के कलमश को नष्ट करने वाली है। विधि निषेध मैं कलमश हरनी राम कथा रवि नंदिनी। रवि नंदी माने सूर्य पुत्री अर्थात हमारी कालिंदी। तो विधि निषेध मैं माने यही कि ये तुमको करना है और ये तुमको नहीं करना है। विधि माने करो, निषेध माने नहीं करो। तो सत्यम ब्रूयात, ब्रूयात अगर तुम लोग संस्कृत के कुछ अभिज्ञ हो तो इसमें ब्रूयात में आदेश है, बोलो सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो। ये हो गया विधि। निषेध में मां हिंस्यात सर्वा भूतानी, किसी भी भूत प्राणी की हिंसा न करो। कलंजम न भक्षे, कलंज का भक्षण मत करो, ये निषेध हो गया। तो शास्त्र की विधि जो है माने आदेश है वो विधि निषेधात्मक है। ये तुमको करना है, ये तुमको नहीं करना। तो विधि जहां आदेश दिया जाता है उसका पालन करना धर्म है, न करना अधर्म है। और जहां निषेध है उसको नहीं करना धर्म है, करना अधर्म है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। किस समय किस अवसर पर क्या आचरण करना है, यह बहुत कठिन है। सक्सेसफुल पर्सन्स वही हैं जो तत्काल एक सेकंड के अंदर निर्णय कर लेते हैं या कुछ देर में निर्णय करना कर लेते हैं, इस समय हमको यह करना है, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। थोड़ी देर लगा दी तो गया। कभी कभी कोई अपने से बात गलत निकल जाए, तुम्हारे मन में आ रहा कि माफी मांगू, सोचने लग गए और उतनी देर में टाइम निकल गया तो गड़बड़ हो जाता है। तत्काल कर दो। अरे और तो और आप लोगों में से बहुत लोग जानते हैं, आजकल तो हॉबी हो गया है, कंप्यूटर में जैसे ही वो दिखा रहा ऐसे कट नहीं किया तो गया, कोई दूसरा खरीद लेगा तो टापते रहे। तो हाउ क्विक यू मेक डिसीजन, वो तुम्हारे सक्सेस या अनसक्सेस का परिचय हो सकता है। कभी कभी कुछ चीज किसी से माफी मांगने की इच्छा होती है और नहीं माफी मांग पाए और अवसर निकल गया, पीछे कैसा पछताते हैं, आप लोगों के बहुतों के जीवन का अनुभव होगा। एक आध लोग तो संकोच में कह नहीं पाए और वो चला गया व्यक्ति, तो उसके बाद जिंदगी भर का ऐसा पछतावा होता है कि अब क्या करें। इसलिए बहुत कठिन काम है कि किस समय क्या करें। सत्संग के अन्य और जो भी लाभ हैं उनके अलावा एक लाभ ये भी है कि निरंतर सत्संग करते रहने से हमारा ब्रेन अलर्ट रहता है और किस समय क्या हमको आचरण करना है वो तत्काल करवा देता है। इसलिए भी सत्संग करना चाहिए। जिनको भगवान से कुछ न लेना देना हो उनको भी सत्संग इसलिए करना चाहिए कि किस समय कौन सी क्रिया करें। भोजन कराना बहुत पुण्य है, अपने प्रिय को तो स्पेशल भोजन कराना बहुत पुण्य है, लेकिन किस समय अपने प्रिय को भोजन न करा के उसके सामने से प्लेट छीन लेना। हमारे यंग मधुसूदन को प्रेम करने का मन करता था, लेकिन जिस समय ये अमुक व्यवस्था थे हमारा मन होता था इस समय तो खास तौर से आलिंगन करो, लेकिन अपने आलिंगन करने के मन को हम रोक लिया करते थे, माय डियर के लिए हानिकारक होगा। अब प्रेम से छुआ हमने, तो ये विवेक किस समय क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमको सत्संग से, बिन सत्संग विवेक न हो। विवेक का मतलब क्या है? सीधा सीधा विवेक का मतलब यह है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन दोनों को अलग अलग कर लेना, इसी का नाम विवेक है। क्या करना है क्या नहीं करना, और विवेक हर जगह चाहिए माय डियर। ऐसी कौन सी जगह है जहां विवेक नहीं चाहिए? प्राइम मिनिस्टर को भी अगर विवेक चाहिए, मंत्री को भी विवेक चाहिए, तो संतरी को भी विवेक चाहिए। किसको रोके किसको नहीं रोके, किसके आने पे खड़ा होए, किसके आने पे खड़े होकर सलूट करे, किसके लिए खाली गर्दन हिला ले, किसी के लिए बैठे कुर्सी उधर देख ही नहीं रहे, ये उसको विवेक करना पड़ता है, नहीं संतरी को मुश्किल हो जाए। तो विवेक माने सबको चाहिए, हर एक को। अरे दाल में कितना रामरस डालना है इसका भी विवेक चाहिए, ज्यादा हो जाए तो गड़बड़, कम हो जाए तो गड़बड़। तो विविनक्त इति विवेक, जो विविनक्त माने जो अलग अलग कर दे उसका नाम विवेक है। क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, ये विवेक चाहिए, और ये सत्संग के द्वारा ही होता। मैया के साथ सत्संग किया, भाभी के साथ सत्संग किया, बड़ी बहन के साथ सत्संग किया, तो पता चल गया कि पालक में कितना रामरस डाला जाता है और परवल में कितना रामरस डाला जाता है। एक तौल से नहीं डालते, पालक में अपने आप थोड़ा सॉल्टी होती इसलिए थोड़ा कम रामरस, और परवल में थोड़ा ज्यादा रामरस। अब ये उसमें लिखा है कि अंदाज से रामरस डालो, अब अंदाज माने कितना डालो, तो ये सत्संग से ही पता चलता है, मां के बहन के इत्यादि। तो क्या विवेक हर जगह? अरे साड़ी कैसे पहननी चाहिए माय डियर, बड़ा डिफिकल्ट काम है। आप पहन के दिखाओ तो मैं जानू, इतना दुनिया भर के साड़ी बेचते हो, दुनिया को पहनाते हो, पहना के पहन के दिखाओ हमको तो जाने। विवेक चाहिए, बड़ा डिफिकल्ट है, कहां से कहां तक करना है, कितना पल्लू करना है, वैसे करके देखना है कि यहां से यहां तक आ जाए, कितना लटकना है कितना नहीं लटकना है, अरे बड़ा डिफिकल्ट काम है। झोल बराबर होनी चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया पुअर एकदम बराबर, झाड़ू लगाने वाली साड़ी पहननी है कि थोड़ा ये सब विवेक चाहिए। ये विवेक सत्संग से प्राप्त होता है, इनके पास विवेक है, कब ऊपर बजाना है कब नीचे बजाना है कब मध्यम बजाना है, विवेक। आप लोगों का विवेक भी है, कब कीर्तन बोलना है कब धीरे धीरे बोलना है कब नहीं बोलना है, विवेक है आपका। तो इसलिए शास्त्र प्रमाण, मैं ये कह रहा था अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कि डोलडालालय में भी जप करो, भगवान का वचन है गीता में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, यह है वचन, तुम्हारा वचन है कि नहीं गीता में, है ना? मधुसूदन का वचन है गीता में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अच्छा, अब सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर का मतलब क्या हुआ बताओ? सब सत्संगी लोग हैं, पांच माला सवेरे जप ली, दो माला दोपहर जप ली, शाम को तीन माला जप ली, हो गया सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, भगवान के ऊपर एहसान कर दिया, लो हमने पांच और दो सात तीन दस, चलो एक और कर, ग्यारह माला कर दी, तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया, चलो जय श्री कृष्ण, बाकी सब काम बाकी दिन भर अपना और जरूरी जरूरी काम करेंगे। सर्वेषु कालेषु का मतलब है सर्वस्मिन काले, सब समय में, केवल सुबह उठते से लेके शाम को सोते समय तक ही नहीं, सुबह शाम पांच माला जप ली वो बात नहीं, जागते समय ही केवल भगवान का भजन करें ऐसी बात नहीं है। फिर सर्वेशु कालेशु नहीं हुआ, स्वप्न के समय भी भगवान का स्मरण होना चाहिए। और तो और सुषुप्ति के समय भी भगवान का भजन होना चाहिए। सुषुप्ति माने आप सब सत्संगी लोग जानते हो प्रगाढ़ निद्रा, जिसको वेदांत वाले कहते हैं मैं सुख से सोया और कुछ नहीं जानता। मैं प्रारंभ में जब यहां पर आए थे तो विचार चंद्रोदय ग्रंथ का पाठ हुआ करता था, उसकी ये भाषा है, मैं बड़े सुख से सोया और कुछ भी नहीं जानता भया। मैंने प्रगाढ़ निद्रा, इस ऐसी डीप स्लीप में सो गए कि कुछ पता ही नहीं चला, उसमें भी भगवान का भजन होना चाहिए। अब ये एक अलग प्रश्न हो जाएगा कि स्वप्न में, वैसे तो हर समय जागृत में कैसे हो, जागृत में किसी तरह पे, स्वप्न में कैसे हो, सुषुप्ति में कैसे हो, ये प्रसंग हम कई बार पहले कह चुके हैं, लेकिन उससे क्या मतलब हम फिर कहेंगे और फिर कहेंगे, लेकिन आज हम अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। केवल इतना मान लो कि भगवान का आदेश है तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण, सब समय मेरा स्मरण करो। तो अब ये भगवान का विधि वाक्य है, तो इस विधि वाक्य का पालन हम डोल डालालय में नहीं करें संभव है, तो इसलिए उस डोल डालालय में भी भगवान का भजन करो। ये भगवान मधुसूदन का वचन, श्री कृष्ण का वचन है, गीता में आदेश है, तस्मात शास्त्रम प्रमाणम ते। हमारा अभिमान नहीं है कि जो हम आपसे कह रहे हैं कि डोल डालालय में भी भगवान का भजो, भगवान का आदेश भी है। इसलिए अच्छा अब एक बात बताओ, हम तो अब भूलने लग गए हैं बहुत जल्दी जल्दी, उम्र का पता जाने लगे, ये बात क्यों हमने चलाई थी कि डोल डालालय में भी भजन करो और आदेश और शास्त्र, ये सब बातें क्यों हुई थी, किस लिए, ये प्रसंग कहां से उठा था है? हाँ, अरे वाह, वेरी अलर्ट, यस, थैंक यू टू मेक इट मी रिमेम्बर। और आप लोग अलर्ट रहना, हम बार बार भूल जाते हैं, तो हमको कोई ना कोई अलर्ट करते जाना, बी अटेंटिव, आपस में शेयर करो, इतनी देर तक तुम अटेंटिव रहो, इतनी देर तक हम अटेंटिव रहे, ये बाबा जी भूल जाते हैं, इनको बताते रहना, नहीं गड़बड़ कर जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने लोक शिक्षण कह दिया, भैया अरे तू वहां भजन करता, वहां भजन नहीं कर। अब उनको इतना अभ्यास हो गया था कि जब वहां जाए तो अपने आप जबान चले, जबान चले और भजन नहीं करना था, दोनों हाथों से जबान को पकड़े रहे। अब दोनों हाथों से जबान को पकड़े हैं तो दूसरा कर्म नहीं हो रहा है, बड़ी डिफिकल्टी हो गई, कि उनको वहां पर भी याद आता जबान पकड़ के रखे हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम वहां भी जब कर सकते हो। तो अच्छा ये बात क्यों, चैतन्य महाप्रभु वाली बात क्यों आई थी कि वहां जप करो वहां जप नहीं करो, हाँ तो ये अंतिम मति वहां पर क्यों, ये जप की बात क्यों आई थी, मतलब ये कि उनमें किसी को कोई कमी है ज्ञान की, ये बात नहीं है, लेकिन तो भी वो शास्त्र का श्रवण करते, वो शास्त्र का श्रावण करते हैं, क्योंकि सर्वथा सत्संग करना, सर्वथा जप करना, सर्वथा भगवान का ध्यान करना, ये सबके लिए अवश्य कर्तव्य है। तो सत्संग हमको करना है, आप सुनाओगे तो हम सुन लेंगे, आप हमसे सुनने लगोगे तो हम आपको सुना देंगे। तो ये हमारे मन में कोई अभिमान नहीं है कि हम आप लोगों को कोई बहुत दिव्य बात कहने जा रहे हैं और ऐसी कोई नई बात कह देंगे जो आप लोगों ने सुनी नहीं होगी। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, बल्कि कुछ बॉटल्स तो वाइन की कम से कम मेरी जानकारी में 50-60 साल पुरानी है, उससे ज्यादा भी होंगी शायद, हमको 50 नहीं और ज्यादा, उससे ज्यादा हमें को पता याद है ये। अरे उनका वही शेप है, वही लेबल है, वही उनका ढक्कन है। तो ओल्ड वाइन ओल्ड बॉटल, मेरी ओल्ड बॉटल में वही वाइन है। हाँ, लेकिन वो वाइन आपको आनंद दे, इसके लिए आपको नए नए ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। अभी हम गए थे वहां कोरासाओ, तो वहां उनके घर में बड़ा बढ़िया कैबिनेट लगा था, उसमें कम से कम 50 तरह की तो वाइन होंगी ही, 50 तरह की तो होंगी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वाइन। उन्होंने ढक दिया था हमारे अपने कपड़े से, लेकिन एक दिन कपड़ा गिर गया तो मैंने देख लिया। अब वो वहां एक सभ्यता है, वो घर क्या जिसने वो कैबिनेट न हो और उसमें उसके लिए कोई एक नाम है बैठने की जगह इत्यादि का, बार ये तो वो वैसे बार माने रोकना होता है। लेकिन ठीक है, तो मैंने उससे पूछा बिना संकोच के कि ये कॉकटेल क्या होती है। दो समझने लग गए, हमने कहा आपको ये कभी मौका नहीं मिला, मेरे मन में बहुत दिनों से है कि व्हाट इज कॉकटेल पार्टी। कॉक माने हमको मुर्गा पता, टेल माने पूछ, तो कॉकटेल पार्टी क्या होती है हमने पूछा। भाई अगर हमको विवेक नहीं है तो हमको सत्संग करना ही पड़ेगा, जिज्ञासा करनी ही पड़ेगी, और जिज्ञासा किससे करेंगे, जो जानकार लोग हैं, तो जानकार लोगों से हमने जिज्ञासा की। तब उन्होंने हमको बताया ऐसे ऐसे जोड़ा जाता है, एक ड्राई जिन होती है। मैंने कहा ड्राई क्या, तो एकदम लिक्विड है, ये ड्राई क्या है। तब उन्होंने उसकी विशेषता, खैर वो उधर नहीं जा रहे, लेकिन वेरिएशन बता रहे हैं कि इसको इसको ऐसे मिलाया जाता, किसी में हनी मिलाया जाता है, किसी में नींबू हनी मिलाया, इत्यादि इत्यादि कॉकटेल। तो उसी तरह हम भी कॉकटेल आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, कभी ये मिला दिया, कभी वो मिला दिया, कभी कभी किसी तरह से तुमको प्रेम मदिरा का पान कराना है। प्रसंग हमारा लक्ष्य किसी तरह तुमको प्रेम रस के। अभी हम वहां साउथ अफ्रीका में एक फल होता है, उसका हमको वीडियो दिखाया गया, तो उस फल के लिए खूब लड़ाई होती है, लेकिन वो फल को सब खाते इतने होते हैं, और वो सब फल, वो फल खाने के बाद और उनकी क्या दशा होती है, हाथी कैसे लुढ़कता है, जिराफ कैसे गिरता है, बंदर कैसे उल्टा पुल्टा होता है, ये सब हमको दिखाई पड़ा। वाह, तो प्रेम का हमको परिवेशन करना है, भगवत प्रेम आप में जागृत हो, इसके लिए ये सब कॉकटेल है, देना तो वही है। तो सत्संग हम कोई नई बात कहने के लिए नहीं, सत्संग हमारे संस्कार दृढ़ होते रहें, जो भूल गए हैं उनको स्मरण कर लें, जो स्पष्ट नहीं है उनको और स्पष्ट कर लें, और जो जानकारी है वो और दृढ़ हो जाए। हाँ, ये बात सही है, महाराज जी ने भी ये बात कही थी, रमण रीति वालों ने, इसके माने सही। तो इसी सत्संग की दृष्टि से आप लोगों की सेवा में हम आते हैं, आपका कितना लाभ होता है ये तो आप जानो, लेकिन हमारा बहुत लाभ होता है, इसी बहाने हम इसको देख जाते हैं। प्रसंग चल रहा था नव योगेश्वर संवाद का। देखो नव योगेश्वर संवाद एक बहाना है, हम चार दिन में पूरा नव योगेश्वर संवाद आपको समझा, चार दिन तो बहुत है, और कब मैं समझा सकता। सप्ताह कथा में तो शायद कोई पहले तो कोई नाम ही नहीं लेता है नव योगेश्वर संवाद, थोड़ा ऐसा प्रसंग है कि वो कोई कहता ही नहीं, और कहेगा भी तो दो चार मिनट में निपटा के चला जाएगा, पूरा हो गया नव योगेश्वर संवाद। लेकिन बड़ा गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि इसमें श्रोता भी बहुत महान है और वक्ता भी केवल महान नहीं अनुभवी है, और एक नहीं नौ नौ। जनक का नाम तो गीता में आ गया, महर्षया जनकादय, वो जनक जो है वो जिज्ञासु है, और उनका उत्तरदाता कौन है, नव योगेश्वर है, जो अपने आप में परिपूर्ण है और सबके सब प्रसंगानुसार उत्तर दे रहे हैं। तो ये नवयोगेश्वर संवाद का मूल क्या है, वसुदेव जी को अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, भगवान के पिता बनने का सौभाग्य मिल गया, इसलिए मैं कह रहा हूं सावधान रहो, भगवत साक्षात्कार के बाद भी सत्संग चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाता है। ध्रुव के ऊपर भगवान ने कृपा की, लेकिन जब वो काम क्रोध के बस में आए तो उनको सत्संग की जरूरत पड़ी। तो ये भ्रांति मत करो कि अब तो हमने बहुत सुन लिया है, भगवान का साक्षात्कार कर लेने के बाद भी सत्संग की आवश्यकता होती है। भगवान पुत्र हैं वसुदेव जी के, लेकिन तो भी उनकी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ। भगवान ने कुरुक्षेत्र में प्रयास किया, लेकिन पुत्र विषयक धारणा होने के कारण गुरु बुद्धि नहीं आई। गुरु बुद्धि के अभाव में भगवान के वचन भी वसुदेव जी की शंकाओं का निर्मूलन नहीं कर सके, इसलिए गुरु के विषय में अत्यंत श्रद्धा आवश्यक है। इस प्रसंग के विषय में हम लोग और आगे चर्चा चलाएंगे। तस्मात् गुरुं प्रपद्येता, श्रद्धा नहीं है पूरी, संपूर्ण श्रद्धा नहीं है, इसलिए भगवान के कहने पर भी ज्ञान नहीं हुआ। और ये भी पुष्ट करता है एक बात और, तस्मात् गुरुं एव अभिगच्छेत, जो उपनिषद में लिखा एवकार, एवकार माने सिवाय गुरु के और कोई उपाय नहीं, एव माने केवल गुरु उपाय, भगवान भी नहीं। भगवान करके तो थक गए, कहा हुआ, गुरु ही एव उपनिषद कहता है, गुरु एव अभिगच्छेत। तो इसलिए भगवान ने नारद जी को उनके पास भेजा, नारद जी के आने पर स्वागत किया वसुदेव जी ने, और उनसे तस्मा श्रोतु हे भगवान श्रोतुमिच्छामि धर्मान भागवतांस्तव या श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्या मुच्यते सर्वतो भयात्, ये प्रश्न किया वसुदेव जी ने नारद जी से। तब नारद जी ने उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, वही जो हम लोगों के यहां की परिपाटी है, आजकल के लोग कहते हम आपको नई बात कह रहे हैं, नारद जैसा प्रबुद्ध महापुरुष कहता है, मैं तुमको कोई नई बात बताने जा रहा हूं ये बात नहीं है, ऐसी एक परिस्थिति पहले आई थी और उस समय जैसे आपने प्रश्न किया है ऐसे ही प्रश्नोत्तर हुए थे, वो हम आपको प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। ये कह करके नारद जी ने निमि और नव योगेश्वर संवाद की चर्चा प्रारंभ की, माय डियर, ये इसकी भूमिका है। भागवत धर्मों का कर्तव्य कर्तव्य के विवेक का निर्णय करने के लिए वसुदेव जी के प्रश्न के उत्तर में नव योगेश्वर और राजा जनक के निमि के परस्पर सत्संग का संवाद का वर्णन किया गया है। वही बहाना हमने अपनी वाइन परोसने के लिए कर रखा है। तो ये कोई नई बात कही जाएगी नहीं है, वही बात कही जाएगी जो सतयुग में कही गई थी, त्रेता में कही गई थी, द्वापर में कही गई थी, कलयुग में तब से लेके अब तक कही जा रही है। वही संवाद का आज हम लोगों ने, भगवान मधुसूदन ने भी स्मरण किया और हमने कहा आज यही चर्चा होगी। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, इसलिए गुरु का प्रपन्न बनो, जिज्ञासु जिसको उत्तम श्रेय की आवश्यकता है, वो गुरु कैसा है। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण उपसमाश्रयम। तो इस श्लोक की चर्चा फिर भगवत कृपा से हम लोग कल करेंगे। श्री रमण बिहारी लाल की जय, जय राधे, जय रमण बिहारी, जय नंद नंदन, जय हल
राधे, जय रमण बिहारी, जय नंद नंदन, जय हल धारी,
जय राधे, जय रमण बिहारी, जय नंद नंदन, जय हल धारी,
जय राधे, जय रमण बिहारी, जय नंद नंदन, जय हल धारी,
शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी,
शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी,
शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी,
शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी,
जय
राधे, जय रमण बिहारी, जय नंद नंदन, जय हल धारी,
जय राधे, जय रमण बिहारी, जय नंद नंदन, जय हल धारी,
जय राधे, जय रमण बिहारी, जय नंद नंदन, जय हल धारी,
रमण बिहारी लाल की जय।